स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमें विश्वास है कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक हैं और आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से तिमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रिका विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन को हम आरम्भ करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और इसके साथ अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से दूसरा तिमुथियुस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस पत्री का लेखक पौलुस है और जिसने इस पत्री को अपने अंतिम समय में लिखा है। तो मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इस पत्री के अध्याय 3 और उसके 10 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए, आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम फिर से दूसरे तिमुथियुस की पत्री से वचन का अध्ययन करते हैं, विनती करते हैं कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि आज हम जो कुछ भी सुने हम उसे समझ सकें और अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, किसी प्रकार के तनाव और दबाव में हैं। पिताजी, आप उन्हें शांति प्रदान कीजिए, आज उनसे बातचीत कीजिए ताकि वे इस बात को समझ सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं और आज आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और हम देखेंगे अंतिम दिनों में धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता। दूसरा तिमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया है। तिमुथियुस पौलुस को घनिष्ठता से जानता था। पौलुस का जीवन एक खुली किताब था जैसा प्रत्येक विश्वासी का जीवन होना चाहिए और इसलिए यहाँ पर पौलुस तिमुथियुस से कहता है, तूने मेरे चाल चलन, उपदेश, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया है। अर्थात तिमुथियुस भी पौलुस के साथ साथ था। तिमुथियुस पौलुस के जीवन की हर एक बातों को जानता था, इसीलिए पौलुस उसे पुत्र भी कहता है। दूसरा तिमुथियुस की पत्री 3 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम में और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। यहाँ पर तिमुथियुस पौलुस की यात्राओं के कष्टों को भली भांति जानता था, उसके बारे में बताया गया है। पौलुस अपनी पहली और दूसरी और तीसरी प्रचार यात्राओं में अंताकिया, पिसिदिया, आइकोनियम, लुस्त्रा आदि सब गलातिया प्रांतों में गया था। जी हाँ, लुस्त्रा में पौलुस को पत्थरवाह किया गया था और मृतक समझकर उसे छोड़ दिया गया। मेरे विचार में वह वास्तव में मर गया था, परंतु परमेश्वर ने उसे फिर से जीवित किया था। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हस्तक्षेप करके उसको इन सब से मुक्ति दिलाई। तीमुथियुस इन सब बातों को जानता था क्योंकि वह भी वहीं का रहने वाला था। दूसरा तीमुथियुस के पत्र 3 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। मेरे मित्रों, किसी देश के रक्षा मंत्रालय के सचिव ने कहा था, इस संसार में मसीही होना अधिकाधिक अमान्य हो रहा है और शीघ्र ही खतरनाक हो जाएगा। यह सत्य आज प्रकट है। सच्चा मसीही विश्वासी और सच्चे मसीही जन आज अस्वीकार्य हैं। आज यदि एक रूढ़िवादी प्रचारक नाम कमाता है तो उसे विकृत करके उसका गलत अर्थ निकाला जाता है। यदि वह नरक में जाने वालों में से कुछ को बचा ले तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। मेरे प्रियो, हम उस दायरे में प्रवेश कर रहे हैं जहां मसीही को अर्थात विश्वासियों के लिए खड़े होने की कीमत चुकानी होगी। आज लोग सत्य को सुनना नहीं चाहते हैं। आप उन्हें जो कुछ भी संसार के बारे में बताएं वे सुनेंगे, परंतु यदि आप उन्हें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं तो कोई भी आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, हम ऐसे ही संसार में जी रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस के पत्र 3 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। लिखा है बहकाने वाले, जादूगर या धोखा देने वाले, धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए वे सब पथ भ्रष्ट करेंगे और अंत में स्वयं पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। यह कलीसिया के उठाए जाने के पूर्व की घटनाएं हैं। ऐसे समय में परमेश्वर की संतान क्या करे? मेरे प्रियो, मुझे और आपको सचेत होना है कि हम बहकाने वाले और धोखा देने वालों के अधीनता में ना चले जाएं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को और अधिकाई से और गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता है। पौलुस कहता है कि अंतिम दिनों में मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे और भक्ति का भेष धरकर शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे लोगों से विश्वासियों को दूर रहना है। ये लोग यन्नेस और यम्ब्रेस जैसे परमेश्वर विरोधी होंगे जो शैतान के सामर्थ का प्रदर्शन करेंगे, परंतु उनकी अज्ञानता एक दिन सब पर प्रकट हो जाएगी। मित्रों, हम आगे यहां पर देखते हैं विश्वास त्याग की विषधर औषधि। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 14 और 15 पद में लिखा है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। विश्वास त्याग का एक ही तोड़ है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर की संतान का एकमात्र स्रोत और सहारा परमेश्वर का वचन है। मेरे मित्रों, पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि वह उन शिक्षाओं में बना रहे जो उसे दी गई है। उसने अपनी यहूदी माता और नानी से धर्मशास्त्र का ज्ञान ग्रहण किया था, प्राप्त किया था। कहता है, उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बना सकते हैं। वह कौन से उद्धार की चर्चा कर रहा है? तीमुथियुस का तो उद्धार हो चुका था। उद्धार के तीन समय होते हैं। पूर्व काल में हम उद्धार पा चुके हैं। प्रभु यीशु ने मृत्यु दंड उठाई हमारे स्थान पर और हमारे बदले में। उस पर विश्वास करके हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर सकते हैं और हम दंड के भागी नहीं होते। रोमियों के पत्र 8 अध्याय उसके एक पद में पौलुस भी यही कहता है, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जी हाँ, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो कोई मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जो कोई मसीह यीशु में नहीं है उन पर दंड की आज्ञा है। तो मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप इस समय मसीह यीशु में हैं या नहीं है। यदि नहीं तो आज आपके लिए भी अवसर है कि हम प्रभु को जानें, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। हम अब भी उद्धार पा रहे हैं। वह हमारे उद्धार का कार्य कर रहा है। हमारा उद्धार इस जीवन में पूरा नहीं होगा, परंतु भविष्य में एक दिन आने वाला है जब वह प्रकट होगा और हम उसके स्वरूप में हो जाएंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 2 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सामने होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। यहाँ पर आगे पौलुस के कहने का अर्थ है कि धर्मशास्त्र हमें उद्धार की प्रक्रिया ही नहीं सुझाता, अर्थात मृत्यु से जीवन, अनंत जीवन और परमेश्वर की संतान, परंतु हमें इससे दुष्ट संसार में भी बचाता है। जी हाँ, वह हमें विकास में सक्षम और यहाँ मुक्ति दिलाता है। यह मेरा विवाद है। परमेश्वर के वचन का लगातार अध्ययन ही हमारी हर एक की सहायता है। वही हमें मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, और मेरे विचार में वह हमें इस पृथ्वी पर भी जीने के लिए बुद्धि देता है। मेरे मित्रों, आज हम कितने समय तक परमेश्वर के वचन में समय देते हैं? मेरे कहने का अर्थ है कि हम वचन को कितना पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म के शिक्षा के लिए लाभदायक है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र से पौलुस का अभिप्राय है पूरा का पूरा धर्म शास्त्र, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक। अब आप कहेंगे, क्या आप नहीं जानते कि दूसरा तीमुथियुस के लिए लिखे जाने के समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नहीं थी? जी हाँ, मैं जानता हूं, परंतु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक धर्मशास्त्र में जुड़ गई है और संपूर्ण शब्द में आती है। प्रेरणा का अर्थ है परमेश्वर की श्वास से। धर्मशास्त्र के लेखक कलम के समान तो थे नहीं कि परमेश्वर उन्हें उठाकर लिखना आरंभ कर दे। यहां आश्चर्य की बात तो यह है कि परमेश्वर ने इन लेखकों के व्यक्तित्व को काम में लिया और उन्हीं के विचारों में व्यक्त करके जैसा वह चाहता था वैसा ही कहा। इन लेखकों के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है और उससे अधिक कहने के लिए आज उसके पास कुछ और नहीं है। यदि वह आज स्वर्ग से भी कुछ कहेगा तो तो जो उसने धर्मशास्त्र में कह दिया है उससे अधिक वह कुछ भी नहीं कहेगा। कहता है उपदेश अर्थात शिक्षा, बाइबल के अध्ययन से हमारा विश्वास बढ़ता है, यही कारण है कि हम शिक्षा देते हैं। सुधारने अर्थात पाप को बोध करवाने के लिए, बाइबल पढ़ने से हमें यह बोध होता है कि हम एक पापी हैं। और सच तो यह है कि बाइबल पढ़कर आप परख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम कर रहा है या नहीं। यदि आप बाइबल को अन्य किसी पुस्तक के समान पढ़ें तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा, परंतु यदि आपको पापी होने का बोध हो तो आप जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। धर्मशास्त्र इसलिए लिखा गया है हमें समझाने अर्थात आपके जीवन में सब ठीक करने के लिए, भूल सुधारने के लिए। और आगे हम देखते हैं धर्म की शिक्षा अर्थात अनुशासन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोचना और काम करना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। दूसरा तीमुथियुस के पत्री 3 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मेरे प्रियो, सिद्ध इसका अर्थ यह नहीं कि हम जो भी करें वह सिद्ध हो, इसका अर्थ है परिपक्व होना। आज अनेक शिशु या नए विश्वासी हैं, हम परिपूर्ण पूरी तरह विकसित जन होंगे। जी हाँ, हमें सिद्ध होने के लिए परमेश्वर के वचन में, उसके डर में, उसके भय में और उसके निकटता में बढ़ते जाना है, ताकि हम प्रभु को और अधिकाई से जान सकें, उसे समझ सकें, उसके प्रेम में और अधिक बढ़ सकें। इसलिए वह कहता है कि हमें सिद्ध होना है, हमें परिपूर्ण होना है, हमें विकसित होना है। तब वह कहता है कि तत्पर हो जाएं, अर्थात पूर्ण रूप से सुसज्जित। परमेश्वर का वचन आपको जीवन में हर एक भले काम के लिए आपको योग्य बनाएगा। मेरे मित्रों, मैं इन छोटे छोटे कार्यक्रमों और पद्धतियों के विरुद्ध में हूं जो आपको कुछ आसान पाठ्यक्रमों के द्वारा मसीही परिपक्वता दिलवाना चाहते हैं। संपूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और आपकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति के निमित्त है। मेरे प्रियो, कई बार हम किसी लेखक के द्वारा लिखे छोटी छोटी पुस्तकों को बड़े दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं, उसके बातों को सुनते और मानते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन जो हम सबके लिए है, संपूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है, उसकी बातों को हम नहीं मानते हैं। मैं कभी कभी समझ नहीं पाता कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हम परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते हैं परंतु किसी व्यक्ति के लिखे बातों को तुरंत मान जाते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप पुस्तकों को ना पढ़ें, परंतु मैं आपसे कहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को पहले पढ़ें, उसमें से सीखें और आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। मेरे प्रियो, अध्याय 3 के उपसंहार में मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि पौलुस ने तीमुथियुस को बड़े ही व्यक्तिगत रूप में लिखा है। तीमुथियुस को परमेश्वर का वचन सिखाया गया था और अब उसे परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। तीमुथियुस को सिखाया गया था कि विश्वास के त्याग के समय हमारा स्रोत और राहत परमेश्वर का वचन ही है, वही हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण रूपेण पूरी करेगा। परमेश्वर का वचन असंख्य जनों के मन में यही कर रहा है, जो हमारे रेडियो कार्यक्रम को सुनकर हमें पत्र लिखते हैं। जी हाँ, हमने देखा है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से अर्थात परमेश्वर की श्वास से रचा गया है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर जो कहना चाहता था वह उसने कह दिया। इस कारण परमेश्वर का वचन मनुष्य के मन की आवश्यकता को पूरी करता है। मैं आपको एक पत्र पढ़कर सुनाता हूं जो इस तथ्य का प्रमाण है। यहां पर पत्र में इस प्रकार से लिखा है, मैं इसे अधिक लंबा बनाना नहीं चाहती हूं, जबकि मेरे मन में यह कई पृष्ठ लंबा है कि परमेश्वर के वचन की आपकी शिक्षा का मुझे और मेरे पति को क्या लाभ प्राप्त हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि अनेक पारिवारिक समस्याओं और अनेक प्रश्नों के समय हमारे जीवन को कैसा आनंद प्राप्त हुआ है। हमारे इस अधेड़ आयु में हम अपनी युवावस्था की तुलना में प्रेम, आशा और उत्साह को अब अधिक जान पाए हैं। हमारे पिता ने दुख को, आपको और सत्य वचन को इस उपलब्धि का एक महान अंश बनाया है। मैं आपको तीन बातें बताना चाहती हूं जो मैं और मेरा पति आपके कार्यक्रम सुनने से पूर्व कभी नहीं जान पाए थे, जबकि हम विश्वासी माता पिता द्वारा पाले और पोसे गए थे और नियमित रूप से हम आराधना में जाते थे। हमारे शिक्षकों ने हमें समझाया और हमने बाइबल भी पढ़ी, परंतु पता नहीं क्यों हम कभी नहीं जान पाए। मेरे विचार में प्रभु हमें तैयार कर रहा था, क्योंकि अब मैं उसके प्रयोजन को समझ पाई हूं। हम अपने पाप के स्वभाव और पवित्र आत्मा को प्रेरितों के विश्वास वचन से अधिक कभी नहीं जान पाए थे। हम विश्वास करते थे कि पवित्र आत्मा मरियम में समा गया था, परंतु यह नहीं जानते थे कि वह हम में अंतर्वास करता है और न ही हम पुनरुत्थान के जीवन को जानते थे। हम भले मनुष्य बनने के संघर्ष का युद्ध हार रहे थे और लगभग हार भी चुके थे, परंतु आपके रेडियो कार्यक्रम से हमने सीखा कि हमें हारना नहीं है और परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा हमें उचित दिशा में ले चलेगा। मेरे प्रियो, इस पत्र को पढ़कर सुनाने में मेरा उद्देश्य यह है कि खाने का प्रमाण खाने में है। परमेश्वर कहता है कि उसका वचन लाभदायक है और इस दंपत्ति ने सिद्ध कर दिया है कि यह लाभदायक उनके जीवन में था। जब यह उनके मन में प्रवेश करता है, तब वह ऐसा काम करता है जो अन्य पुस्तक नहीं कर सकती, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। मेरे मित्रों, ऐसा आपके जीवन में भी कार्य हो सकता है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ करते हैं और पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं, तो निश्चय ही आपका जीवन परमेश्वर की निकटता में बढ़ने पाएगा। आप उन बातों को सीखने और समझने पाएंगे जिसे आपने कभी सोचा नहीं था और न ही किसी ने आपको बताया है। आप समझते नहीं थे, उन बातों को आप समझने लगेंगे, क्योंकि यह आप नहीं परंतु पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे मसीही परिवार में लोग बाइबल अर्थात परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं और आराधना में जाते और आते हैं, परंतु उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। इसका कारण यह है कि वे आराधनालय में जाते तो हैं, परंतु परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं और न ही उसकी बातों को जानने और सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम अपने जीवन को झांक करके देखें, परमेश्वर से कहें कि प्रभु, आप मुझे सिखाइए, मुझे बदलिए, मेरे जीवन में आप कार्य कीजिए। जी हाँ, जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, तो निश्चय ही परमेश्वर हम सबके जीवन में अपनी आशीषों को उंडेलेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने परमेश्वर के वचन के सामर्थ को जान लिया है क्योंकि हमने पढ़ा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यह वचन आपके जीवन के लिए लाभदायक है। क्या आप नहीं चाहते कि आप उन आशीषों को पाएं जिसे परमेश्वर ने आपके लिए रखा है? इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु 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 रिश्ता हमसे जोड़ता है, और ना तन्हा छोड़ता है। रिश्ता हमसे जोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं पास अपने पाऊं। ओ जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं पास अपने पाऊं। बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है। बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है। यीशु 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 जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा ये